हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 18 श्लोक संख्या 12 एंड 13। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम अख्यन्ति मिलन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अत्यैव मे विशतो मानसराज हंसा प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्त्वा। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तत्थाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेनया कल्पिता श्रीमद्भागवतम् प्रमाणमम श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो न पर। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कथाधार श्रीवासदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। पहला स्कंद 18वां अध्याय श्लोक संख्या 12। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूत गोस्वामी मुनियों को जब महाराज परीक्षित की इतने सुंदर कथाओं, जो कि भगवान की कथाओं से भरी हुई थी, भगवान की कथाओं, भगवान के आशीर्वाद, भगवान की लीलाओं से संपन्न जो महाराज परीक्षित की लीला सुनाई, उसके उपरांत जो ऋषिगण है वो बहुत ही प्रसन्न है। और सूत गोस्वामी को पहले उन्होंने कहा कि हे सौम्य सूत गोस्वामी, आप अनेक वर्षों तक जिए, आप उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि जो हमें कुछ सुनाता है उसे आशीर्वाद देना चाहिए, उसे कुछ न कुछ देना चाहिए, उसके लिए प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा सुत जीवा समा सौम्य, आप बहुत बहुत वर्षों तक जियो, शाश्वती विशदम यश, और आपका यश जो है वो बहुत शाश्वत काल तक फैले। यश तुम क्यों सी कृष्ण से, क्योंकि आपने हमें बहुत ही सुंदर रीति से भगवान के कृष्ण के मधुर लीलाओं को सुनाया है, कृष्ण की कथाओं को सुनाया है, और वो सब कथाएं हम जैसे मर्त्यानाम अमृतम हीनः, हम जैसे मर्त्यों के लिए, हम जैसे अपराधी पतित जीवों के लिए तो अमृत तत्व की तरह है। और आगे वो ऋषिगण सुत गोस्वामी से कहते हैं, मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए, कर्म यस्मिन्नाश्वासी धूम धूम्रात्मनाम भवान आपाययति गोविंद पादपद्मासनम मधु। कर्म यस्मिन्नाश्वासी धूम धूम्रात्मनाम भवान आपाययति गोविंद पाद पद्मासवम मधु। कर्मण यस्मिन्ननाश्वासी धूम धूम्रात्मनाम भवान आपाययति गोविंद पाद पद्मासवम मधु। कर्मण यस्मिन्ननाश्वासी धूम धूम्रात्मनाम भवान आपाययति गोविंद पाद पद्मासवम मधु। कर्म यस्मिन्ननाश्वासी धूम धूम्रात्मनाम भवान आपाययति गोविंद पाद पद्मासवम मधु। शब्दात् कर्मण यस्मिन् ननाश्वासे, कर्मण यानी जो अभी हम कर्म करने के लिए बैठे थे, क्या कर्म करने के लिए बैठे, सकाम कर्म यानी यज्ञ करने के लिए बैठे थे, याद है आप सबको, ऋषि मुनि 1000 साल तक यज्ञ करने के लिए बैठे थे, तो वो कह रहे हैं कर्मण अस्मिन् अनाश्वासे, ये जो हम कर्म करने के लिए संपन्न करने के लिए यहाँ पर बैठे थे अनाश्वासे, निश्चित रूप से नहीं, कोई जरूरी नहीं था कि ये संपन्न हो जाए, निश्चित रूप से इसका संपन्न होना आवश्यक नहीं था। और इसके साथ क्या हो रहा है, धूम धूम्रात्मनाम भवान, धूम यानी इस यज्ञ से, अब आप खुद सोचो 88,000 ऋषि मुनियों ने जो बड़ा सा यज्ञ कुंड बनाया होगा उसमें कितनी आहुति जा रही होगी और कितना धुआं उठ रहा होगा, तो वे कह रहे हैं धूम धूम्रात्मना, धूम्रात्मना कलुषित शरीर तथा मन, हमारा पूरा शरीर भी काला हो गया है उसके धुएं के कारण, इतना धुआं उड़ रहा है, और उसके अतिरिक्त हमको भी इतनी खांसी हो रही है, आंखों में से पानी निकल रहा है, और शरीर तथा मन जो है वो धूम, मतलब कोई पवित्रता नहीं आ रही है इससे, हमारे मन पवित्र नहीं हो रहे हैं, शरीर अपवित्र हो रहा है, तो धूम धूम्रात्मनाम भवान आप आपाययति अत्यंत प्रसन्न बना रहे, आपने जो हमें बताया है उसके कारण जो है वो हमारा मन प्रसन्न हो रहा है, इस यज्ञ के कारण तो हम और भी दुखी हो रहे थे, आपाययति गोविंद, आप क्यों, आपके कारण क्यों खुश हो रहे हैं, गोविंद क्योंकि भगवान के पाद पद्मासवम, पद्मासवम मतलब कमल पुष्पों का अमृत या मधु, मधु का मतलब होता है शहद, कि आप तो हमें इतना मीठा मीठा भगवान के चरण कमलों के मधु का आस्वादन करा रहे हो, इसके कारण आपाययति हम संतुष्ट हो रहे हैं, बाकी ये जो हम अपना अपनी बुद्धि से जो कार्य करने के लिए बैठे थे कर्मण यस्मिन् ननाश्वासे, इसका तो कोई निश्चित भी नहीं था कि ये संपन्न होगा या ना होगा, और इसका परिणाम भी निश्चित नहीं है, और जो हम ये कर रहे हैं उस टाइम पर भी क्या हो रहा है, धूम धूम्रात्मनाम, तो हमारा मन और शरीर जो है वो दूषित हो रहे हैं, तो हम सबको गोविंद के चरण कमलों के मधु को आप प्रदान कर रहे हो, गोविंद पाद पद्मासवम मधु, तो आपने क्योंकि हमें भगवान के पवित्र कथाओं का श्रवण कराया है इसलिए हम बहुत ही संतुष्ट हो गए हैं। अनुवाद, हमने अभी अभी इस काम कृत्य यानी यज्ञ की अग्नि को संपन्न करना प्रारंभ किया है और हमारे कर्म में अनेक त्रुटियां होने के कारण इसके फल की कोई निश्चितता नहीं है। हमारे शरीर धुएं से काले हो चुके हैं, लेकिन हम गोविंद भगवान के चरण कमलों के उस मधु से सचमुच तृप्त हैं, जिससे आप हम सबको वितरित कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी समझा है कि नैमिषारण्यों के मुनियों ने जो यज्ञ अग्नि जलाई वह निश्चय ही धुएं तथा संशयों से पूर्ण थी, क्योंकि उसमें अनेक दोष थे। पहला दोष ये था कि इस कलयुग में ऐसा यज्ञ कार्य संपन्न कराने वाले पटु ब्राह्मण का नितांत अभाव है। ऐसे यज्ञों में यदि कोई दोष रह जाता है तो पूरा खेल बिगड़ जाता है और फल भी अनिश्चित रहता है, जैसा कि कृषि कर्म में होता है। धान के खेत को जोतने से अच्छा फल तभी मिलता है जब अच्छी वर्षा हो, अतएव फल निश्चित है, फल अनिश्चित है। कलयुग में निर्लज लोभी ब्राह्मण अबोध जनता को ऐसे अनिश्चित यज्ञों का दिखावा करने के लिए फुसलाते हैं और उन्हें यह शास्त्रीय आदेश नहीं बताते कि कलयुग में कोई भी सकामी यज्ञोत्सव संभव नहीं है। इस कलयुग में केवल एक ही यज्ञ संभव है और वह है भगवान नाम का सामूहिक कीर्तन। सूत गोस्वामी समवेत मुनियों के समक्ष भगवान की दिव्य कार्यकलाप सुना रहे थे और वे सब इन दिव्य कार्यकलापों के सुनने से फल का अनुभव कर रहे थे। कोई भी इसे प्रयोग करके उसी तरह अनुभव कर सकता है जिस प्रकार भोजन करके उसका फल देखा जा सकता है। आध्यात्मिक अनुभूति इसी प्रकार होती है। नैमिषारण्य के मुनि यज्ञ की अग्नि से उठने वाले धुएं से कष्ट पा रहे थे और फल के विषय में भी संशयपूर्ण थे, किंतु सूत गोस्वामी जैसे अनुभवी व्यक्ति से सुनने के कारण वे पूरी तरह से संतुष्ट थे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में विष्णु जी शिव जी से कहते हैं कि कलयुग में लोग विविध प्रकार की चिंताओं से पूर्ण होने के कारण व्यर्थ ही सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन में श्रम करेंगे, किंतु यदि वे भक्ति में लगे तो परिणाम अधिक निश्चित होगा और शक्ति की भी हानि नहीं होगी। दूसरे शब्दों में भगवान की भक्ति के बिना आध्यात्मिक साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार के लिए जो कुछ भी किया जाएगा वह व्यर्थ ही होगा। श्रील प्रभुपाद की जय। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति कीरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। पहला स्कंद 18वां अध्याय, जिसका शीर्षक है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्याप। आज ये ऋषिगण अत्यंत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि ये हम जो यज्ञ करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए थे, कर्मण्यस्मिन् ननाश्वासे, इसका कोई आश्वासित नहीं थे, हम निश्चित नहीं था कि हम इस कर्म को कर पाएंगे, यह संपन्न होगा या ना होगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि कलयुग प्रारंभ हो चुका है और कलयुग में जो है वो जीवों के अंदर वो पवित्रता नहीं है, वस्तुओं के अंदर वो पवित्रता नहीं है, मंत्र उच्चारण में उतनी पवित्रता नहीं है, इसलिए उन यज्ञ कर्मों के संपन्न होने में कोई निश्चितता नहीं है, आश्वासन नहीं दिया जा सकता कि यह जो यज्ञ है वो संपूर्ण होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में 18वें अध्याय के श्लोक नंबर 5 में कहते हैं, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याजं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणां। कुछ भी हो जाए, यज्ञ दान और तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मुनिगण कह रहे हैं कि ये जो सकाम कर्म हम कर रहे थे, जो यज्ञ कर रहे थे, कर्मण यस्मिन् ननाश्वासे धूम धूम्रात्मना भवान, इससे तो हम पूरे धुएं से भर रहे थे, हम लोगों को पूरा धुआं आ रहा था, हमारा पूरे चेहरे काले हो रहे थे, तो इसलिए हम लोगों ने वो यज्ञ कार्य छोड़ दिया। अपायति गोविंद पाद पद्मा सवम मधु, और हमने ये यज्ञ कर्म करना छोड़ दिया। लेकिन भगवान कहते हैं यज्ञ दान तप कर्म नत्याजम कार्यमेव तत्, यज्ञ दान और तपस्या के कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए। और इसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ तपस्या और भोक्तारम यज्ञ तपस्या, कि यज्ञ और तपस्या को भोगने वाला भी मैं हूँ। अब भगवान ने कह दिया कि आपको यज्ञ करना है और यज्ञ को भोगने वाला मैं हूँ, और फिर भी ये मुनिगण जो है वो अपने यज्ञ को छोड़ के बैठे हुए हैं, तो क्या ये गलती पर है? बिल्कुल नहीं भक्तो। भागवतम महापुराण में जब 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 32 में जब कलयुग के जीवों के लिए यज्ञ की स्तुति की जाती है कि कौन सा यज्ञ कलयुग के जीवों को करना चाहिए, किस यज्ञ की संस्तुति की जाती है, वो बताते हैं कृष्णवर्णम, कृष्णवर्णम यानी कृष्ण का वर्णन किया जाए, वह यज्ञ जिसमें कृष्ण के विषय में बोला जाए, और वह भगवान का वह अवतार जो कृष्ण के विषय में वर्णन करता है, कृष्ण के पवित्र नाम का वर्णन करता है, कृष्णवर्णम त्विजा कृष्णम, परंतु वो स्वयं कृष्ण नहीं होगा, अकृष्ण यानी गौर होगा, कौन होगा? गौर हरि। कृष्णवर्णम त्विजा कृष्णम, और वो किसके साथ आएगा? सागो पांगस्त पार्षदम, अपने अंगो अंग और पार्षदों के साथ आएगा। कौन होंगे उनके पार्षद? नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, शिवास ठाकुर, गदाधर पंडित, इन समस्त पार्षदों के साथ वो आएंगे, और एक कलयुग के लिए एक अलग यज्ञ की संस्तुति करेंगे। वो कौन सा यज्ञ होगा? यज्ञ संकीर्तन प्रायः ही, संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति करेंगे, और फिर उस यज्ञ का पालन कौन करेगा? यजन्ति ही सुमेधसा, कलयुग में जो वास्तव में बुद्धिमान होंगे, सुमेधसा, सु का मतलब होता है सुष्ठु रूपेण, जो वास्तविक में बुद्धिमान होंगे। अब कलयुग में हमारी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हम बुद्धिमान सब अलग अलग जीवों को बताते, लेकिन शास्त्र ने कह दिया कि कलयुग में जो वास्तविक बुद्धिमान होंगे वो संकीर्तन यज्ञ आंदोलन में सम्मिलित होके भगवान के पवित्र नाम का जप यज्ञ करेंगे। और भगवान ने स्वयं कह दिया 10.25 में यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, अर्थात हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ है वो भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, भगवान की पवित्र कथाओं का कीर्तन, यज्ञ संकीर्तन, ये जो कीर्तन हम कर रहे हैं, भगवान के पवित्र शब्दों को श्रवण कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं, यही बात किया है इन्होंने महर्षि, जितने भी 88,000 ऋषिगण हैं, वो हम जैसे कलयुग के पतित जीवों को सिखाने के लिए अपने यज्ञ कर्मों को छोड़ दिए। मतलब अब जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि अब इस कलयुग में पशु बलि वाला कोई यज्ञ संपन्न करना संभव नहीं है, वो ब्राह्मण जो है वो धूर्त है, और वो हम जैसे साधारण लोगों को ठगने के लिए, धोखा देने के लिए ये पशु बलि वाला यज्ञ करवाते हैं। परंतु श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कलयुग के निर्लज लोभी ब्राह्मण अबोध जनता को ऐसे अनिश्चित यज्ञों का दिखावा करने के लिए फुसलाते हैं, और उन्हें शास्त्रीय आदेश नहीं बताते हैं। क्या आदेश है? कि कलयुग में कोई भी सकाम यज्ञोत्सव संभव नहीं है। कलयुग में वो यज्ञ जो सकाम यज्ञ होते हैं कि भाई ये करूंगा तो मुझे पुत्र उत्पन्न होगा, ये करूंगा तो मुझे धन प्राप्त होगा, ये सब यज्ञ अभी संभव नहीं है, कलयुग में नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए हमें जो ब्राह्मण लोग हैं उन्हें स्पेशली हर एक को बताना चाहिए कि कलयुग में केवल एक ही यज्ञ करना संभव है और वो है भगवान के पवित्र नाम का यज्ञानाम जप पर यज्ञ। उसमें भगवान के नाम का जप करना वही सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ है, क्योंकि जो दूसरे यज्ञ हैं उनमें काफी दोष होते हैं। स्वयं ये यहाँ पर तो दोष होने का इतना संभवता नहीं है, क्योंकि सारे ऋषिगण जो हैं वो पवित्र हैं, पवित्र 88,000 ऋषि मुनि यहाँ पर आकर यज्ञ कर रहे हैं और कह रहे हैं कर्मण अस्मिन ननाश्वासे कि हमें कुछ ज्यादा भरोसा नहीं है, आश्वासन नहीं है कि हम इस यज्ञ को संपन्न कर पाएंगे। यानी कि वो हमें बता रहे हैं कि आप अगर ऐसे यज्ञ करते हो जिसमें आप सोचते हो कि आप संपन्न कर पाओगे तो वो तो बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने भी छोड़ दिया, हम भी यज्ञ नहीं कर रहे हैं और सबसे बड़ा यज्ञ कर रहे हैं गोविंद गोविंद पाद पद्मासवम मधु, भगवान के चरण कमलों के मधु को हम स्वीकार कर रहे हैं, जो कि एक शुद्ध वैष्णव सूत गोस्वामी जो हमें बता रहे हैं। हम गोविंद भगवान के चरण कमलों के उस मधु को से सचमुच तृप्त हैं, अपायति, इसी से आनंद संभव है, इसी से तृप्ति संभव है। तो वे बता रहे हैं कि यज्ञ करने से तो आप आनंद चाहते हो ना, संतुष्टि चाहते हो, तृप्ति चाहते हो, तो दूसरा कोई यज्ञ करके आपको आनंद मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी या तृप्ति मिलेगी उसका कोई भरोसा नहीं है। कर्मण यस्मिन ननाश्वासे, कोई आश्वस्त नहीं कर सकता आपको, कोई निश्चित नहीं है कि दूसरा कोई भी इस कलयुग में आप यज्ञ करोगे तो उससे आपको आनंद होगा। परंतु अपायति गोविंद पाद पद्मा सवम मधु, लेकिन यदि आप भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को श्रवण करोगे, भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जप करोगे तो अवश्य आपको संतुष्टि प्राप्त होगी, क्योंकि भगवान का जो नाम है उसके अंदर भगवान का ही, भगवान की सारी शक्ति जो है वो सम्मिलित है। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता, जब भगवान का नाम लिया जाता है तो साक्षात भगवान जो है वो हमारी जिह्वा पर आकर विराजमान हो जाते हैं। जिह्वा हमारी तब यशोदा बन जाती है और हमारी जिह्वा के ऊपर आकर वो बाल कृष्ण खेलने लगते हैं। जिस तरह वो यशोदा मैया के गोद में खेलते हैं तो यशोदा मैया के आनंद की, उनकी तृप्ति की, उनकी संतुष्टि की कोई सीमा नहीं रह जाती। उसी तरह जैसे एक भक्त भगवान का नाम जप करता है, भगवान की कथाओं के विषय में कुछ चर्चा करता है, जब भगवान की कथाओं को श्रवण करता है तो हमारा शरीर जो है वो ये जो जड़ शरीर है ना, जो कान है, जो नेत्रों से जब हम भगवान के दर्शन करते हैं, मुख से जब भगवान के पवित्र गुणगान को करते हैं, पवित्र नाम का जप करते हैं, कर्णों से कथाओं को श्रवण करते हैं, तो हमारा शरीर जो है वो भगवान को, बेशक हमारे शास्त्रों में अलग अलग यज्ञों का यानी पशु बलि का भी विधान बताया गया है, लेकिन वो अलग अलग युगों के लिए है। इस कलयुग में केवल जप यज्ञ ही करना चाहिए, भगवान की कथाओं को ही श्रवण करना चाहिए। एक बार चैतन्य महाप्रभु को चांद काजी ने कहा था, उनसे पूछा था कि आप तो कहते हो कि माता पिता मारी खाए एको न धर्म, तो यज्ञों के विषय में तो वेद में भी बताया गया है, वेद में पशु वध करके या अश्वमेध यज्ञ के विषय में बताया गया है, तो आप कैसे हमें बोल रहे हो। तब चैतन्य महाप्रभु ने बताया, नहीं, ये वध नहीं होता जो हम यज्ञों में, जो यज्ञ किया जाता है जो मंत्रों के द्वारा ब्राह्मण जब यज्ञ करते हैं तो उससे पशुओं की हत्या नहीं होती है, इससे पशुओं को हाईएस्ट स्तर की प्राप्ति होती है, वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त होती है। और वो पशु से अगर उनको वापस से किसी शुद्ध भक्त के घर पे जन्म मिलता है और वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है या फिर उनकी मुक्ति डायरेक्ट से हो जाती है। परंतु अब इस कलयुग में क्योंकि इसे मंत्रास पढ़ने वाले शुद्ध ब्राह्मण नहीं है इसलिए पशु बलि वर्जित है, क्योंकि यदि ब्राह्मण ने मंत्र उच्चारण करने में जरा सी भी गलती कर दी तो इसका बिल्कुल विपरीत फल होगा। श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में एक ब्राह्मण जो जिसका नाम है तुष्टा, उसका पुत्र था विश्वरूप, उसके तीन सर थे। तुष्टा ने विश्वरूप को देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करने के लिए आज्ञा दी। तो वो जब यज्ञ में अग्नि में आहुति डाल रहा था तो देवताओं के नाम की आहुति डाल रहा था, पहले इंद्रदेव, चंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव, तो सारे देवी देवता प्रसन्न हो रहे थे। परंतु देवताओं को पता ना चले इस प्रकार विश्वरूप गुप्त रीति से असुरों के नाम भी ले रहा था, उनको भी फल प्राप्त हो। ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि विश्वरूप का संबंध कुछ असुरों के साथ भी था, देवताओं और असुरों दोनों के साथ उनका संबंध था, वो दोनों को प्रसन्न करना चाहता था। तो किसी को भी पता नहीं चल रहा था कि वो ऐसा कर रहा है। एक दिन इंद्र को पता चल गया, उसने विश्वरूप की गर्दन को काट कर उसे मार डाला। जब तुष्टा को पता चला तो वो बहुत ज्यादा क्रोध में आ गया और उसने कहा कि ये इंद्र अपने आप को क्या समझता है, उसने एक ब्राह्मण के पुत्र को मार डाला। फिर तुष्टा ने एक यज्ञ किया जिसका उद्देश्य था कि एक ऐसे व्यक्ति की उत्पत्ति हो जो इंद्र का वध करे। उस यज्ञ में उसने एक शब्द का उच्चारण किया, इंद्र शत्रु, मतलब ऐसा व्यक्ति चाहिए, उत्पन्न होना चाहिए जो इंद्र का शत्रु बने और इंद्र का वध करे। परंतु शब्द उच्चारण करने में उससे कुछ गलती हो गई, उसका मतलब ये बना कि ऐसा व्यक्ति उत्पन्न हो जिसका शत्रु इंद्र बने और इंद्र उसका वध कर दे। अब जो व्यक्ति उत्पन्न हुआ उसको तो इंद्र से कोई शत्रुता नहीं थी, बल्कि इंद्र जो है वो उसका शत्रु बन गया, तो उसे बहुत बहुत शक्ति मतलब प्राप्त हो गई। तो पहले के ब्राह्मण इतने ज्ञानी थे और उनसे भी ऐसी गलतियां हो जाती थी, फिर आज के बुद्धिहीन मनुष्य की क्या बात करनी चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस बात को जानते थे, इसलिए इस कलयुग में केवल महामंत्र ही एक ऐसा मंत्र है, ऐसा यज्ञ है जिसका हम उच्चारण करेंगे तो हमें वास्तविक आनंद, वास्तविक शांति और वास्तविक तृप्ति प्राप्त होगी। इसलिए हमें इस कलयुग में केवल भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए, भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए, इसी से हमारा जीवन संतुष्ट होगा और हमारा कल्याण होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा। हरे कृष्ण।